بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزوں کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ قصص میں تھی کہ عرض ہوا خداوند قدوس اپنے حبیب کو بیان فرماتا ہے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. ہم آپ کو موسیٰ و فرعون کے کچھ احوال سنانا چاہتے ہیں, سناتے ہیں بالحق, کہ ہمارا سنانا بھی برحق ہے اور وہ احوال بھی برحق ہے. لقوم یؤمنون, ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں, جو یقین رکھتے ہیں. اس کے بعد والی جو آیہ کریمہ ہے, چوتھی آیت, کہ آج انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. اس چوتھی آیت کے اندر خداوند متعال ابتداءً اس زمانے کے فرعون کا تعارف کروا رہا ہے کہ وہ فرعون کون تھا, کیا تھا, اور اس نے کتنے مظالم ڈھائے ہوئے تھے. اس چوتھی آیت کے اندر اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے, اور پانچویں آیت میں خداوند متعال اپنی سنت کو بیان کرتا ہے. تو اس چوتھی آیت کا میں ابتدائی ترجمہ کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض, بے شک بتحقیق فرعون زمین کے اندر, کہ اس زمین سے مراد وہی مصر ہے, اس زمین کے اندر علا, علا کنایا ہے ستمگری سے, ظلم سے, جبر سے, یعنی فرعون اس زمین میں جبر کر رہا تھا, ظلم کر رہا تھا. وجعل اہلہا شیعاً, اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ میں بانٹ دیا تھا, مختلف گروہ بندی کی ہوئی تھی, ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. یستضعف طائفة منہم, اور ان گروہوں میں سے ایک گروہ کو اس نے کمزور کر رکھا تھا. یذبح ابناءہم, ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیی نساءہم, اور ان کی عورتوں کو जिंदा रखता था। ये सब क्यों करता था? इन्नहू कान मिनल मुफसिदीन, क्योंकि वो मुफसिदीन में से था, फसाद फैलाने वालों में से था, इसलिए वो ये सब कुछ करता था। ये सादा सा तर्जुमा। अब आते हैं थोड़ा सा इस आयत के बारे में कुछ अराइज आपकी खिदमत में अर्ज करें। पहले पहली बात कि ये जो फिरौन है, आप जानते हैं कि ये फिरौन किसी का नाम नहीं है। जो तवारीख से पता चलता है, फिरौन उस बादशाह का नाम नहीं था, बल्कि मिस्र के अंदर जो बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे। मसलन हमारे यहाँ जैसे लफ्ज़ बादशाह है, बादशाह का लफ्ज़ है, ये बादशाह का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल होता है? शाह के लिए, बादशाह के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से फिरौन भी मिस्र के अंदर बादशाह को कहा जाता था। और ये भी बिल्कुल जहन में ना रखिएगा कि मिस्र के बादशाहों के एक सिलसिले का नाम फिरौन था, ना, कुल्लन बादशाह को फिरौन कहते थे। जैसे हमारे यहाँ बादशाह होता है, राजा होता है, इस तरीके से मिस्र के अंदर फिरौन कहा जाता था। अच्छा, वहाँ पर जो फिरौन बनता था, यानि बादशाह जो बनता था, तो जाहिर सी बात है कि उसको आमादा करने के लिए, बादशाही के लिए अनवाव अकसाम की वर्जिशें करवाई जाती थी, फ़नून जंगी हो, हुकूमतदारी के उसूल हो, और बहुत सारा सिस्टम होता था उन लोगों के पास, कि जिसके ज़रिए से वो उसको बादशाही के लिए आमादा करते थे और तैयार करते थे। जैसे मसलन हिंदुस्तान के अंदर राजा महाराजा वगैरह होते थे। बहरहाल के मैं ज़्यादा तारीख में नहीं जाता कि ये फिरौनों की जो तारीख मिस्र पर है, तकरीबन 3000 साल तारीख है कि 3000 सालों तक तकरीबन इन लोगों ने मिस्र पर हुकूमत की है। और ये जो हज़रत मूसा के ज़माने का फिरौन है, कि जिसके बारे में अभी हम गुफ्तगू भी करेंगे, उसके लिए कहते थे ये वही रामसेस दुव्वम है। रामसेस दुव्वम ये तकरीबन हज़रत मूसा का मुआसिर है। कि बहरहाल ये मिस्र के जो बादशाह हैं, ये तकरीबन इन लोगों की हुकूमत चलती रही चलती रही, यहाँ तक के करने अव्वल मीलादी, पहली सदी मीलादी में मसीहियत ने वहाँ पर नफूज किया। फिर दूसरी सदी में आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर उन्होंने अपना तसल्लुत जमाया। कि बहरहाल ये सिलसिला इस तरीके से मसीहियों का और इन लोगों का आपस में चलता रहा, ता इनके इस्लाम ज़ुहूर पैदा करता है। और तकरीबन खलीफा दुव्वम के ज़माने में फुतुहात इस्लामिया का जो सिलसिला शुरू होता है, तो खलीफा दुव्वम के ज़माने में मिस्र फतह होता है। ये इसका तारीखी थोड़ा सा इजमाली इशारा किया कि ताकि इससे आशना हो जाएं, कि ज़्यादा बहस उसमें नहीं है हमारी। आते हैं खुद फिरौन की जो खसूसियात हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि ये जो ज़ालिम बादशाह है, जिन लोगों का काम इस्तिकबार होता है, इस्तेमार होता है, इन लोगों की खसूसियत क्या होती है? कि इन आयात के अंदर खुदावंद मुताल फिरौन और फिरौनियत के बारे में बताना चाहता है कि फिरौन कैसे बनता है, फिरौन क्या होता है, उसकी कौन सी खसूसियतें हैं, इनको परवरदिगार आलम जिक्र करता है। इन फिरौन अला फिल आर्द, ये लफ्ज़ अला अरबी ज़बान में वही इस्तिकबार के माना में है, जुल्म करने के माना में है, अपने आप को बड़ा समझना, ये तकरीबन इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो पहली पहली खसूसियत इस फिरौन की यह है कि अला फिल आर्द, अपने आप को जमीन में सबसे बड़ा समझ रहा था। ये फिरौनों की आदत है, फिरौनियत की ये खसूसियत है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। कहते हैं कि सब हमारे पीछे चलें, जिस तरीके से हम कहना चाहते हैं उसी तरीके से करें। को भी आजकल की दुनिया में तसव्वुर करना इतना मुश्किल नहीं है। बस मुमालिक को जो देखते हैं वो हर सूरत में कहते हैं कि हमारी आगाही को तस्लीम किया जाए, हमें बड़ा तस्लीम किया जाए। इसकी बेहतरीन मिसाल आपके सामने अमेरिका और इसराइल है। खूब अमेरिका का सबसे बड़ा झगड़ा यह है कि वाकई हमको बड़ा समझा जाए। वो अपने उलूव के पीछे है, वो इस सरजमीन पर, इस जमीन पर अपना उलूव चाहता है, अपनी बड़ाई चाहता है। उसका जुल्म और जबर किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस जगह पर जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से ये मजालिम डालते हैं। तो खूब ये जो कुरान फिरौन के लिए कह रहा है, इन्न फिरौन अला फिल अर्ध, ये हर जमाने के अंदर आप देख सकते हैं। तो पहली पहली खासियत इस फिरौन की यह है, इन्न फिरौन अला फिलहाल, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। कि इंशाल्लाह हम खुद आगे चलेंगे, जैसे कुरान मजीद भी खुद बताएगा कि फिरौन का ये जो दास्तान उलूव से शुरू होता है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, अपने आप को जमीन पर उस तरीके से हाकिम करार दे रहा है, जुल्म कर रहा है। इसकी ये दास्तान उलूव से शुरू होती है और दरियाए नील के अंदर हलाकत पर तमाम होती है। यानी दूसरे लफ्जों में खुदावंद मुताल इस दास्तान के अंदर एक उमूमी कायदा और एक उमूमी सुन्नत बयान करना चाहता है कि जो बंदा भी उलूव का शिकार होगा, जुल्म करेगा, जो भी बंदा इस धरती पर और इस सरजमीन पर अपने आप को जाबिर करार देगा, उसका आगाज तो इस जब्बारियत और जुल्म से होगा, लेकिन उसका सर अंजाम और इंतहा हलाकत पर है। ये फिरौन के दास्तान के अंदर बिल्कुल रोशन है। आगाज इन्न फिरौन अला फिल अर्ज से है, लेकिन इंतहा क्या है, वही दरिया नील के अंदर हलाकत के साथ। तो जो भी इस उलोग से आगाज करेगा उसकी इंतहा यही हलाकत है, इसके अलावा और कोई नहीं। इन्न फिरौन अला फिल अर्ज। अच्छा, एक और खसूसियत जो कुरान मजीद इस फिरौन की बयान कर रहा है वो ये है कि वजअल अहलहा शियअन। इसकी दूसरी खासियत ये थी कि उस जमीन के रहने वाले जो लोग थे उनको मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट दिया था। ये दुश्मन का बहुत बड़ा काम है। दुश्मन हमेशा चाहता है कि मेरे मुकाबले में कोई वहदत ना हो, क्योंकि अगर लोगों के दरमियान वहदत आ गई तो जाहिर सी बात है कि जालिम की हुकूमत फिर नहीं रह सकती, फिर जालिम की हुकूमत खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर सब लोग मुत्तहिद हो जाए, वहदत आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि जालिम की हुकूमत बाकी नहीं रह सकती। जालिम के हुकूमत की बका की रमज इसमें है कि लोगों के दरमियान तफरीका होना चाहिए। आप लोगों के माबैन जब तक तफरीका नहीं डाल सकते, तब तक आप अपनी हुकूमत को बाकी नहीं रखेंगे। खूब जालिम इसको खूब समझता है और इससे पुराने जमाने से लेकर आज के जमाने तक इसी उसूल पर जालिम और जो फिरौन होते हैं अपनी हुकूमतों को बरकरार रखते हैं। उन लोगों का तरीक़ेकार यही है, अपनी हुकूमत को बाकी रखते हैं। कैसे? लोगों को मुख्तलिफ टुकड़ों में बांटते थे। खूब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इसी तरीके से इस्लामी ममालिक को अगर उठा कर देखें, इनको मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट दिया। फिर किसी एक मुल्क के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म की तकसीमात नजर आएंगी। कभी जबानी तरीके से तकसीम नजर आएगी, ये फला जबान वाला है, ये फला जबान वाला है, कभी फिरकों के एतबार से तकसीम नजर आएगी। मैं ये नहीं कहता कि जबानों का मुख्तलिफ होना वो तफरका है, ना, तफरके से मुराद वो है कि यानी इस तरीके की ग्रोह बंदी कि जिस ग्रोह बंदी में एक को दूसरे पर फोकियत दी जाए और दूसरे को पहलों से मुस्तजाफ करार दिया जाए बगैर किसी हक के और बगैर किसी मिलाद के। खूब, ये है तफरका। मसलन जैसे फिरौन करता था ना, फिरौन ने अपने लोगों को दो हिस्सों में बांटा हुआ था, कुछ किबती थे और कुछ सिबती थे। खूब, किबती वो लोग थे जो पैसे वाले थे, मनसब वाले थे, फिरौन के खुद अपने करीबियों में शुमार होते थे, और सिबती वही बनी इसराइल थे कि फिरौन किबतियों को इज्जत देता था, सिबतियों को मुस्तज़अफ किया हुआ था। ये जो किबती और सिबती हिस्सों में तकसीम किया था, फिर इनके नीचे मुख्तलिफ तकसीमें करार दी हुई थी इसने। तो ऐसे मुख्तलिफ टोले मुख्तलिफ टोले मुख्तलिफ टोले उसने बनाए हुए थे ताकि उसकी अपनी हुकूमत बाकी रहे, उसकी अपनी हुकूमत बिल्कुल कायम रहे। जब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जब तक आप लोगों को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं, तब तक क्या होगा? तब तक यही होगा, आप बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत कर सकते हैं। और खूब हर दौर के अंदर जो इस्तेमार है, हर दौर के अंदर इसका बखूबी फायदा लेता है। और कभी कभार न चाहते हुए भी हम लोग, न चाहते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से इस्तेमार की खिदमत में लग जाते हैं। मसलन हमारे पाकिस्तान के अंदर आप मुलाहजा करें, खूब कितनी आपको ग्रोह बंदी नजर आएगी, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये बलोच है। दुरुस्त है, हर इलाके के एतबार से हर एक अपनी जबान है और उस जबान के एतबार से उसका कल्चर है, फरहंग है, ये सारी चीज़ें दुरुस्त, इनसे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इन्हीं चीज़ों को मेयार करार देना। मसलन एक बंदा आए, वो खुद इसी जबान को मेयार करार देते हुए किसी भी बात को कहे, और सामने अगर कोई और बंदा हो उसको रद्द करे सिर्फ इस बिना पर कि वो मेरी जबान का नहीं है, अब ये धड़ेबंदी है। और ये हम देखते हैं अजीबोगरीब किस्म के जोक बनाए हुए हैं, लतीफे बनाए हुए हैं, सिंधियों ने पंजाबियों पर बनाए होंगे, पंजाबियों ने सिंधियों पर बनाए होंगे, इन दोनों ने पठानों पर बनाए होंगे, पठानों ने बलोचों पर बनाए होंगे, बलोचों ने इन पर बनाए, ऐसे ऐसे मुख्तलिफ तरीकों से। क्यों ऐसे होता है? खूब, ये दुश्मन की साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश है। इस्तेमार की हयात इसी में है कि सामने ग्रोह बंदी हो, तकसीम बंदी हो। जब तक सामने ग्रोह बंदी नहीं होगी, तकसीम बंदी नहीं होगी, इस्तेमार अपने जुल्म को बाकी नहीं रह सकता। ये फिरौन के उलूव के लिए कि वो अपनी उस जब्बारियत को और अपने जुल्म को बाकी रखे, उसके जुल्म के बाकी रखने के लिए वो जरूरी समझता है कि जअल अहलहा शेयर, उस जगह के लोगों को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करें, ये अपने लिए बहुत ही जरूरी है, जरूरी समझता है। अच्छा, एक और खासियत कि जो दूसरी जगह पर खुदावंद मुताल ने बयान फरमाई है इसी फिरौन की, एक और खासियत इसकी ये है कि फस्तखफ कौमहू, उसने, ये सूरे जुखरुफ में है, ये फिरौन की खासियत थी कि उसने अपने कौम को खफीफ किया हुआ था, सबुक सर किया हुआ था। इस्तखफाफ का अगर मैं माना करूं तो इस्तखफाफ यानी जहनी तौर पर मफलूज किया हुआ था, यह भी फिरौन की खासियत थी। फस्तखफ कौमहू, उसने अपनी कौम को खफीफ और हल्का किया हुआ था, यानी दूसरे लफ्जों में बेवकूफ बनाया हुआ था। बिल्कुल छोटी छोटी बातों के अंदर उनको इतना उलझाया हुआ था कि उन्हीं चीजों को वो लोग मेयार समझते थे, हकायक से बिल्कुल दूर चले गए थे, छोटी छोटी बातों में आपस में फंसे हुए थे। खूब उन्हीं चीजों को मेयार करार देते हुए उन्हीं में आपस में लगे हुए थे। नतीजतन फिरौन क्या कर रहा था, मजे से हुकूमत कर रहा था। ये ऐसे ही है हमारे यहां भी आजकल देखे आपको आपस में जो झगड़े मिलेंगे बिल्कुल मामूली मामूली चीजों पर झगड़े होंगे, मामूली मामूली चीजों पर। ये क्या है, ये वो ये इस्तिख़फ़ाफ़ है, फिक्री तरीके से जहनी तरीके से मफलूज करना। मसलन जिस तरीके से आप देखे आपका मीडिया है, असलन हमारे मीडिया ने हमारे लोगों को अजीब बनाया हुआ है। असलन विचारों की जहनी और सोचने की सलाहियत बिल्कुल खत्म करके रखी हुई है। आप खुद ये जो मीडिया है, दुनिया की जो खबरें आप सुनते हैं, हर एक बंदे को पता है कि ये लोग किस तरीके से खबरें बयान करते हैं, कितनी उसमें सदाकत होती है, कितना उसमें झूठ होता है। जो एंकर आता है किसी का किसी पार्टी के साथ होता है वो उसी तरीके से बोलेगा, किसी का किसी पार्टी के साथ इर्तिबात होगा वो उसकी जबान बोलेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इन्हीं चीजों को मेयार करार दिया हुआ है, इन्हीं चीजों के मुताबिक कजावतें करते हैं, इन्हीं चीजों के एतबार से फैसला करते हैं। मुझे पहले इस पर इतना ज्यादा नहीं होता था कि वाकई ये लोग इतनी खबासत करते हैं, लेकिन ये इन अयाम में, ये जो अभी कुछ अरसा पहले अयाम, मसलन ये जो कोरोना के अयाम है कि आगाज चीन से हुआ फिर ये ईरान में भी आए, मैं खुद हद अकल सिर्फ अपने पाकिस्तान की मीडिया को देख रहा था, यहाँ के क्या हालात थे, जहां पर हम बैठे हुए कुंभ के अंदर क्या हालात थे, और ये लोग लोगों को कैसे बता रहे थे, दुनिया में कैसे खबरें चल रही थी। वल्ला माह मुबारक रमजान में बात करूं आपके सामने, ये जो जमीनी हकीकत थी और वो जो हम खबर सुनते थे, असल में दोनों के दरमियान कोई मुताबिकत नहीं होती। यहां पर क्या है, वहां पर क्या बता रहे हैं। खूब ये लोग क्या करते, इस तरीके से लोगों को फिक्री तौर पर मफलूज कर देते। सही है, ये भी दुश्मन का काम है। असल जो इस्तेमारी जो सोच रखने वाला है, वो जो अपनी हुकूमत को बाकी रखना चाहता है, वो इन प्रोपेगंडों के जरिए से, इन मुख्तलिफ किस्म की गलत खबरों के जरिए से लोगों को जहनी तौर पर मफलूज करता है। खूबसूरत ज़ुख़रुफ़ में कुरान मजीद कहता है कि फिरौन की एक खासियत ये थी कि फस्तख़फ़ क़ौमहु, उसने अपनी कौम को फिक्री तौर पर मफलूज किया हुआ था, और फिक्री तौर पर मफलूज करने के लिए, जहनी गुलाम बनाने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि मसलन जो फरहंगी फसादात हैं उनके अंदर बढ़ा है, ये शराब है, ये जुआ है, मवाद मुखद्दर है, बी बंदोबारी है, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं इनमें इतना उलझाओ, इतना उलझाओ कि ये अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बना बैठे, ये अपनी इन ख्वाहिशात में लगा रहा है, अपनी इन शहवात में लगा रहा है। खूब ये मुतवज्जे नहीं होगा जो अपनी इन शहवतों के अंदर फंसा हुआ है, जो अपनी इन तमाम ख्वाहिशात का गुलाम बना हुआ है, वो क्या सोचेगा, वो इस्तेमार के खिलाफ क्या सोचेगा, वो जुल्म के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएगा। तो ये फिरौनियत की एक खासियत है और इस्तेमारी हुकूमत की खासियत है, फस्तख़फ़ क़ौमहु। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी खासियत यहाँ पर बयान की जा रही है इसी सूरह कसस के अंदर, यस्तग़ीफ़ु ताइफ़तन मिन्हुम, इसने मुख्तलिफ गुरोह तो बनाए थे, लेकिन मुख्तलिफ गुरोह क्यों बनाए थे, क्या कर रहा था, यस्तग़ीफ़ु ताइफ़तन मिन्हुम, इनमें से एक गुरोह को ये कमजोर करता था, इस्तेदआफ करता था एक ग्रोह का। अला मरूम अल्लामा तबातबाई के बकौल के वो एक ग्रोह वही बनी इसराइल है, कि इस बनी इसराइल को ये क्या कर रहा था, ज़ईफ़ कर रहा था, गुलाम बना रहा था, बनी इसराइलियों को इन्होंने गुलाम बनाया हुआ था। अजब ये भी तारीख की इबरत है कि आपको मालूम है कि ये बनी इसराइल वही हजरत याकूब की औलाद है, कि हजरत यूसुफ ने कनान से जब अपने भाइयों को और अपने वालिद को हजरत याकूब को मिस्र के अंदर बुलाया, तो इब्तिदा में तो बहरहाल हजरत यूसुफ अजीज मिस्र थे, उस तरीके से बड़े शान व शौकत से रहे, ताहिन के ये लोग बनी इसराइल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, बहरहाल औलाद से औलाद औलाद से औलाद, तो अच्छे खासे बनी इसराइल मिस्र में हो गए। टाइम के जो हजरत मूसा के ज़माने तक या थोड़ा सा उससे पहले बहुत ज़्यादा ये लोग बनी इसराइल एक जमीयत को तश्कील देते थे। लेकिन ये लोग ग़ुलाम कैसे बन रहे थे, इस ख्वारी और जिल्लत तक कैसे पहुँचे, ये रिवायत मज़ेदार है। बनी इसराइल इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, ये तफसीर इस्ना आशरी में रिवायत आई है कि बनी इसराइल की जमीयत इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, तो जैसे इन लोगों की जमीयत बढ़ती गई तो खुद बनी इसराइल के अंदर भी फिस्को फुजूर बढ़ने लगा। अच्छा, इन लोगों के अंदर भी फिस्को फुजूर बढ़ने लगा और उधर से जो उलमा और जोहात थे इनके अंदर, उन्होंने अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दिया। खुब जब ये कैफियत हुई तो इन लोगों को खुदावंद मुताल ने इस जिल्लत में मुबतला किया कि इन पर किबतियों को मुसल्लत कर दिया और ये उनकी गुलामी में आ गए और गैर तहम्मुल काम उनसे करवाते हैं। तो ऐसे भी होता है। अलबत्ता इसका मकसद ये नहीं है कि किबती अच्छे लोग थे ना, कभी कभार खुदावंद मुताल किसी कौम को उसके मिन हैसुल मजमूई अमाल की वजह से किसी अजाब में मुबतला करता है, लेकिन वहां पर भी अगर आप गौर करके देखें तो वो जो अजाब में मुबतला होते हैं वो खुद अपने उन कामों की वजह से होते हैं, खुद अपने कामों की वजह से होते हैं। बहरहाल एक तरफ से खुद इनकी ये बदहाली जो इनको इस गुलामी के हद तक पहुंचा रही, दूसरी तरफ से फिरौन की फिरौनियत, जुल्म और जबर, वो चाह रहा है कि इनको इस तरीके से जलील व रुसवा करे। यस्तव्इफु ताइफतन मिन्हुम, बनी इसराइल को वो लोग गुलाम बनाते थे, सही है, इस्तिदआफ करते थे, उनको गुलाम बनाते थे। और आगे इसी आयत के अंदर आप देखें खुदावंद मुताल जो फरमा रहा है कि वो अजब है कि बहुत ही खतरनाक तरीके के जुल्म की जानिब इशारा हो रहा है। युज़बिहु अबनाअहुम, और ये फिरौन क्या करता था, उनके बच्चों को उनके बेटों को ज़बह करता था। वयस्तहयी निसाअहुम, और उनकी बच्चियों को जिंदा रखता था। इन्नहु काना मिनल मुफ्सिदीन, ये सारा काम क्यों करता था, ये बनी इसराइल को गुलाम बनाना, उनके बच्चों को कत्ल करना, ज़बह करना और बच्चियों को जिंदा रखना ताकि उनके जरिए से अपनी शहवत रानियों को पूरा कर सके, ये सब कुछ क्यों करता था। तो कुरान बयान करता है ये इसलिए करता था कि इन्नहु कान मिनल मुफ्सिदीन, वो मुफ्सिदीन में से था। अच्छा, जब वो मुफ्सिदीन में से था लिहाजा ये काम करता था, उसका काम ये था, बनी इसराइल के बच्चों को ज़बह करता था। क्यों? इसलिए कि वो चाहता था कि बनी इसराइल की कुल्ली तौर पर नस्ल को ख़त्म कर दे, उनके मर्दों को नाबूद कर दे। आहिस्ता आहिस्ता अगर इस तरीके से बच्चों को मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बनी इसराइल नाबूद हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से बच्चियों को जिंदा इसलिए छोड़ता था ताकि अपनी कनीजी के लिए, ताकि उनसे मुख्तलिफ किस्म के तमत्तुआत लिए जा सके, इस किस्म के कामों की वजह से उनको फिरौन क्या करता था, बच्चों को ज़बह करता था और बच्चियों को जिंदा छोड़ता था। इन्नहु काना मिनल मुफ्सिदीन, कि वो मुफ्सिदीन में से था। अच्छा, यहाँ पर खुद तवारीख और रिवायात के एतबार से बहस है कि फिरौन उन बच्चों को क्यों ज़बह करता था, तो उसमें बाज़ लोगों ने फिरौन के ख्वाब का तज़किरा किया है, बाज़ लोगों ने उन काहिनों और जादूगरों का तज़किरा किया है कि उन्होंने बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा कि जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म करेगा, कि उस ख्वाब के बारे में भी मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, कि बहरहाल उन बातों में मैं नहीं जाना चाह रहा। कुरान मजीद से जो समझ में आ रहा है कि ये इसका सारा काम क्यों था, इन्नहु कान मिनल मुफ्सिदीन, वो मुफ्सिदीन में से था, फसादगर था, उसका काम फसाद फैलाना था, चाहे ख्वाब होता या ना होता, मुफसिद का यही काम होता है। जिसको समझता है मेरे लिए वो खतरनाक हो सकते हैं, उनको इस्तेज़ाफ़ करता है, उनको गुलाम भी बनाता है। आज भी देखे जो फिरौनियत की सिफत से लैस हैं, वो आज भी गुलाम बनाते हैं, लेकिन बस गुलाम बनाने का तरीका मुख्तलिफ हो गया है, लेकिन गुलाम बनाया जाता है। वही युज़ब्बिहु अबनाअहुम, वाकई बच्चों को कत्ल करते हैं, नस्ल कुशी करते हैं। खुद फलस्तीन आपके सामने किस तरीके से नस्ल कुशी होती है असलन, इसे कहते हैं नस्ल कुशी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता असलन ये नस्ल मुनकरिज हो जाए, खत्म हो जाए, ये काम है युज़ब्बिहु अबनाअहुम। खूब आज का वक्त तमाम हुआ, बस इन दो तीन आयतों से खुलासतन जो पैगाम एक आध हम लोगों को समझ में आता है, अगर उस पर गौर करें तो यही है। पहले मरतबे में समझ में आता है कि फिरौन और फिरौनियत जो इस्तेमारी हुकूमत है वो हमेशा चंद महवरों पर होती है। एक ये कि हमेशा उनकी ताकत क्या होती है, बरतरी तलबी, हमेशा अपने आप को बड़ा समझते हैं। इन्ना फिरौन अला फिल अर्ज, बरतरी तलबी इस फिरौनियत के अंदर होती है, इस्तेमार के अंदर है। दूसरा यह कि अपनी इस बरतरी को कैसे कायम रखते हैं, ग्रोहबंदी के जरिए से, जअल अहलहाशिया, ग्रोहबंदी करते, फिरके फिरके बनाते, फिर उनको आपस में लड़ाते, फिर आपस में लग जाते हैं ये लोग। अच्छा, इसके अलावा यस्तफ़ मिन्हुम, उनमें से फिर एक ग्रोह को गुलाम बनाते हैं, फिक्री तौर पर गुलाम बनाएंगे, फिर एक ग्रोह का इस्तेज़ाफ़ करेंगे, मुस्तज़ाफ़ करेंगे उनको। युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, और इनकी खासियत यह है कि जिनसे इनको खतरा महसूस होगा उनकी नस्ल कुशी करेंगे। क्यों ये सारा कुछ करते हैं ये फिरौनों की, इसलिए कि इन्नहु काना मिनल मुफ्सिदीन, ये लोग मुफ्सिदीन में से, इनका काम फसाद फैलाना है, लिहाजा ये लोग यही करते रहते हैं। कि खुदावंद मुताल हमको ये इस्तेमार की मुख्तलिफ रविशों को समझने की तौफीक इनायत फरमाए, और खुदावंद मुताल से यही दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार आलम हमें इस महीने के अंदर हकीकी मारिफत नसीब फरमाए, और जितने भी अजीजान जिस जिस जगह पे रहते हैं खुदावंद मुताल उन सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।